جی جناب، السلام علیکم. جی فرمائیے.
جی سر، میرا سوال ایکچولی آج کا یہ ہے اختیار پر.
جی جی،
اختیار جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس ہے کسی چیز کو کرنے میں، کوئی بھی عمل کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اختیار بھی اللہ کا ہے. تو جب اختیار اللہ کا ہے تو انسان کی پکڑ کیوں ہوتی ہے اگر وہ اختیار کا استعمال صحیح نہیں کرتا؟
بالکل درست،
یہ سوال ہے. تو یہ تھوڑا کلیئر کر دے، اختیار ہمارا ہے یا اللہ کا؟
اصل میں پہلا جملہ تو یہ ہے نا کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ کہ بھائی اختیار کس کا ہے، اللہ کا ہے کہ بندے کا ہے؟ ٹھیک ہے، اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات بندے کو دیے. کیا کہا؟ اختیار تو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنا اختیار جو ہے وہ بندے کو دان کیا ہے، بھیک میں دیا ہے، اس کو بلیس کیا ہے کہ بھئی یو مے ایکسرسائز مائی اتھارٹیز. اختیار لفظ اتھارٹی میں کر لیں، ٹھیک ہے. اب اصل کہانی سن لیجئے. اصل کہانی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو چوائس کا رائٹ دی ہے، رائٹ ٹو چوز، یہ ہے اصل اختیار، بس دیٹس اٹ. اب دیکھیے، آپ کے سامنے ہر قدم پہ تین راستے ہیں. کیا ہیں؟ ہر قدم پہ تین راستے ہیں. آپ لیفٹ کو جائیں، رائٹ کو جائیں یا سیدھا جائیں، چوائس از یورس. اللہ نے تینوں راستے رکھے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جو مرضی چوز کر لیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں سورہ واقعہ کا خلاصہ بتا رہا ہوں. قرآن حکیم میں سورہ واقعہ کے مطابق آپ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے، وہ جنہوں نے دائیں طرف کا راستہ چنا، وہ جنہوں نے بائیں طرف کا چنا، یا وہ جو سیدھا چلے. ٹھیک ہے، دائیں طرف والوں کو اصحاب الیمین کہا، بائیں طرف والوں کو اصحاب الشمال کہا، سیدھا چلنے والوں کو سابقون کہا. بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں نا، آپ کے سامنے ہر قدم پہ تین راستے ہیں. اللہ نے آپ کو چوائس دے دی کہ چوز. جب آپ نے رائٹ کا چوز کیا تو یو لینڈڈ ان ٹو پیراڈائز، جب آپ نے لیفٹ کو چوز کیا یو لینڈڈ ان ہیل. اگر آپ نے سٹریٹ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم کہلاتا ہے اس کو چوز کیا، تو کہاں آپ اینڈ اپ ہوں گے؟ اللہ کی گود میں. اور کریں، بات سمجھ آئی کہ آپ کو اختیار دیا ہے اللہ نے آپ کے چوائس کا. اب چوز آپ نے اگر صحیح چیز کی تو بینیفٹ کس کو ہوگا؟ آپ کو. اگر آپ کی چوائس غلط ہو گئی تو سفرر کون ہوگا؟ ظاہر ہے جس نے چوز کیا. یہ موٹی سی بات سمجھ میں آ گئی؟
جی سر.
تو آپ کو اللہ نے ڈیسیجن میکنگ کا اختیار دیا. کس چیز کا؟ اللہ ڈیسیجن میکنگ میں آپ کا کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا، آپ جو چاہے کریں. یو ہیو ٹو فیس دا ریزلٹس. کیا کرنا ہے آپ کو؟ ریزلٹس فیس خود کرنے ہیں. اب واضح ہو گئی بات کہ اللہ نے کیا اختیار دیا. یعنی یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی اختیار نہیں ہے بندے کے پاس. بندے کے پاس سارے اختیارات اللہ کے ہیں، سوائے رائٹ ٹو چوز، کہ وہ کیا چیز چوز کرتا ہے. دیکھیں نا، آپ اگر یہ سوال نہ پوچھتے تو کیا میں یہ جواب عرض کرتا؟ بھائی یو چوز ٹو آسک می دس کوشچن آفٹر ہیونگ دی آنسر، ڈونٹ یو فیل انلائٹنڈ؟
یس سر، ویری مچ.
بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، اللہ اللہ ہے، سارے اختیارات، ساری صلاحیتیں، سب در و بست اسی کے. اس نے کہا کہ بھی میں وسائل کے بغیر کام کرتا ہوں، مجھ سے تعلق جوڑ لو، تمہارے بھی کام بغیر وسائل کے ہوں گے.
جی سر،
क्या मतलब हुआ, कौन सा इख्तियार जेरे बहस आया। अब आखिरी बात इस आपके सवाल के जवाब के जेल में, हम बड़े सियाणे क्या हैं, बड़े ही सियाणे हैं, जहां बात आती है इख्तियार की वहां पे हम इसका मतलब पावर्स लेते हैं। हालां लफ्ज इख्तियार का क्या मतलब है, तुमने क्या हुलिया इख्तियार किया हुआ है, व्हाट हैव यू अडॉप्टेड हैं। और करें ना कि लफ्ज इख्तियार का मतलब क्या है, कि तुमने क्या हुलिया इख्तियार किया हुआ है, ये तुमने कौन सा लहजा इख्तियार करके मुझसे बात की है। और करें यहां पे इख्तियार का क्या मतलब ले रहे हैं हम, चॉइस, व्हाट हैव यू चूजन। तो अल्लाह के इख्तियारात वो अल्लाह ही के पास हैं। अल्लाह आपको ब्लेस करता है किस चीज से, विद द राइट टू चूज, विद द राइट टू मेक ए चॉइस। अगर आप कोई चॉइस चूज करते हैं और वो दुरुस्त साबित नहीं होती तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको दूर अंदेशी पैदा करनी है अपने अंदर, दूर अंदेशी की सलाहियत। वला युखाफ उकबहा, क्या कहा अल्लाह ने कि उन्होंने ये एहसास ही नहीं किया कि बाद में क्या होगा। ये है कैच, क्या कि आप अपने अंदर इतनी विजडम पैदा कर लें कि आप जो भी करें आप आगे देखें कि इसका अंजाम क्या होगा, तो यू विल बी एबल टू चूज द राइट थिंग। और करें, कुरान कोई बात अधूरी तो नहीं करता, कुरान ने तो पूरी तरह वजाहत कर दी कि भाई आपको बाद में होने वाली बात को एनालाइज करना आना चाहिए। जो आप मुझसे कोई बात पूछते हैं तो मैं आगे थोड़ा सा आपकी निस्बत जरा सा आगे देख कर अर्ज कर देता हूँ कि अगर आप ये फैसला करेंगे तो ये होगा, तो उससे यू हैव दी असिस्टेंस इन चूजिंग द राइट पाथ, वेदर इट इज ऑन द राइट, वेदर इट इज ऑन द लेफ्ट, वेदर इट इज स्ट्रेट। होप आई आंसर्ड।
यस सर, इट्स वेरी क्लियर।
थैंक यू, थैंक यू, दैट्स व्हाट आई एम फॉर। जी और कोई सवाल जी,
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर, ये बातें मेरे मुराद से एक सवाल था पेज नंबर 70 पे,
इरशाद
की हुजूर बात औकात इंसान के अंदर एक तवील बहस चलती है और इस दौरान कई मनफी ख्यालात भी आते हैं, ऐसे ख्यालात मवाक़े का सबब तो नहीं बनते सर। इस पर अब्बा ने तो सिर्फ का जी नहीं, लेकिन इसकी थोड़ी वजाहत कर दें।
नहीं नहीं, मतलब है देखें, जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें अच्छा बुरा सब कुछ तोलना है, हाँ या नहीं, जैसे अभी बात हो रही थी कि यू हैव गॉट थ्री ऑप्शन, तो आपको तीनों ऑप्शन पे गौर करना है, ठीक है। तो मेरा डर ये था, वो मौलवियों ने जो हमारे अंदर डर बिठाया है कि अगर हम जहन्नमी फैसला करने की तरफ जाएं तो महज क्या जहन्नम को सोचने से अब कहीं जहन्नम तो नहीं मुझे पकड़ लेगी। यानी मैं डरा हुआ था, वही अला इन्ना अलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वलाम याजन। अब्बा ने कहा तू खुल के सोच, हर चीज को एनालाइज कर। देखे मैंने बारहा ये अर्ज किया कि खुल के सोचे, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स को देखें, तोलें, नापें। लेकिन जब आप बात समझने लगे, जब आप डिसीजन लेने लगे, तो एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर,
तकवा,
इसे कहते हैं तकवा, ठीक हो गया।
जी सर, राइट, जी जी सर, बिल्कुल हो गया। थैंक यू सो मच सर।
तो हजूर मुर्शिदे करीम ने बस जी नहीं कह के तो उसे टाल दिया कि ये कौन सी
सही हो गया।
देखे ना, उनके लहजे की डिसाइसिवनेस ने मुझे कितना हौसला दिया है कि बस दैट्स इट। जितना जवाब मुख्तसर होगा उतना याद भी रहेगा। अगर वो तशरीह करने बैठ जाते तो मैं तशरीहों में उलझा रहता। उन्होंने दो टोक जी नहीं कि तू अपनी डिबेट्स करता रहे। कोई मवाखजा नहीं है। देखे ना, जब आप सोच में कोई भी काम अगर गलत कर बैठे हैं तो उसकी पकड़ तो नहीं है। फर्ज करे मैं सोचता हूँ कि मैं इसका माल ये चोरी कर लूं, हैं? तो क्या सोचने पे आप मुझे मेरे हाथ काट देंगे?
नहीं सर।
और करें
जी,
नेक्स्ट
सर
इरशाद
रिलेटेड एक सवाल में दौर कर रहा है हमारे अंदर
जी।
ये जो हम कभी कभी एक चीज का नागा हो जाता है तो हमारे अंदर एक जैसे नदामत कहें या उसको क्या नाम दें, ये चीज होती है जैसे, जबकि इससे निकलना है हमें।
किससे?
खुदा
ना खासा
हम
नाफरमानी। बात ये है, सुने सुने, नदामत तो बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि नदामत का मतलब है यू रियलाइज योर मिस्टेक। क्या और करें
जी?
भाई अगर देखे ना, मैंने कुछ जुमला गलत अर्ज कर दिया और मैं उस पर शर्मिंदा हो गया तो मैंने क्या किया? आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। एक दफा एक वहाँ हट पे एक साहब ने कहा जी, मैंने आगे से कुछ तबसरा किया, कोई बात की, तो वो उन्हें कहने लगे जी मुझे तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
शर्मिंदा,
शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मकसूद साहब हंस पड़े, उन्होंने कहा तो शर की मंदी हो गई ना। तो ये तो अच्छी बात है, शर की मंदी का नाम है शर्मिंदगी। यानी जब हम देखें ना किसी बात पे फील करें कि यार सॉरी ये गलत हो गया, तो क्या हो रहा है? करेक्शन हो गई ना। इसको इसी जज्बे से लीजिए, लेकिन अब फर्क समझ लें। अगला जुमला, फर्क ये है कि डोंट मेक इट ए सेंस ऑफ गिल्ट, डोंट हैव ए गिल्टी कॉन्शियंस। कॉन्शियंस जो है ये गिल्टी नहीं होना चाहिए, एहसास जुर्म नहीं होना चाहिए, एहसास नदामत होना चाहिए। फर्क समझ आया? ये बड़ा बारीक नुक्ता है।
हाँ सर, इसी को तो समझना है।
तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, अगर हम ये समझें कि भाई हमसे गलती हो गई तो उसकी क्या करेंगे? इसलाह। और अगर हम ये समझें कि हमसे जुर्म सरजद हो गया और अब हम पकड़ में हैं, तो फिर हम पकड़ में। जुर्म जानबूझ के किया जाता है, गलती गैर इख्तियारी होती है, इसलिए उसकी कोई सजा नहीं है, उसकी इसलाह होती है।
ओके सर, असल में कहना ये चाह रही थी सर कि जैसे हम लोग बातें मेरे मुराद की, कलंदर शऊर की या वेडियो और ये सारे जो हम कर रहे हैं, इसमें कभी कभी नागा हो जाता है और ऐसा फील हो रहा है।
कोई बात नहीं, देखें असल में अंदर से आपकी रूह आपके जहन को आराम देना चाह रही है।
ओके,
मतलब है नागा, मैं लफ्ज नागे पे इसरार कर रहा हूँ। नागा मतलब है एक आध दिन, दो दिन, यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। ओके, दैट्स फाइन। अब देखे ना, बीच में साल डेढ़ साल, कितने साल में कटा रहा ट्रांसलेशन से। तो क्या हुआ?
जी जी,
हुआ ये कि ओवर द इयर्स वो और पुख्त अंदर पुख्तगी आती गई। मैंने हजूर मुर्शिद करीम से ये बात कही थी कि हजूर मुझसे कुछ नहीं होता, मैं क्या करूं? मतलब तो अब्बा ने कहा लिखा करो हर रोज एक घंटा, मेरे से नहीं होता था। एक दिन मैंने अब्बा से कह दिया कि हजूर आपने कहा है, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं मूड बनता, क्या करूं? तो ये जुमला हजूर मुर्शिद करीम ने उस वक्त फरमाया था, भाई अंदर से वो आराम करके तो कुछ मतलब चीज, जैसे आप अंदर आप देखे ना हंडिया पक रही है,
जी
तो इस तरह फिर अंदर में कुछ चीजें पक रही होती हैं।
जी आपने बताया था,
जी
याद आया, बिल्कुल आपने बताया था। थैंक यू सो मच सर।
मोस्ट वेलकम।
एक और सवाल आ रहा
जी
है
जी
सर।
जी जी आने दीजिए
जी। जब हम कुछ नहीं थे, कुछ न कुछ जरूर थे, तो हम क्या थे सर?
जाहिर है हम रूह थे। यहाँ तो आप जिसम है ना, जब आप जिसम में नहीं थे तो आप कहाँ थे? आप रूह की शक्ल में थे। गौर करें, जब अल्लाह ने कुन कहा तो सारी रूहें पैदा हो गई। जब अल्लाह ने कुन कहा तो सारी रूहें पैदा हो गईं। क्या मतलब है? कि हम अल्लाह के कुन कहने के बाद एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो जब हम इस मादी दुनिया में पैदा हुए तो ये कौन कब कहा अल्लाह ने? आज से अरबों खरबों साल पहले कहा होगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि हम जब कुछ ना थे तो क्या थे? जब मादी जोन में नहीं थे तो कहाँ थे? आलम अरवा में थे। बस ये मतलब है इसका।
थैंक यू सो मच सर।
और जब हम आलम अरवा में नहीं थे तो कहाँ थे? जाहिर अल्लाह के जहन में।
ओके
जी।
थैंक यू सर।
वेलकम। जी
अस्सलाम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी कोई कर रहा है तो वो करने से मैं बाद में करूँगा।
नहीं नहीं आप फरमाएं जी।
अच्छा सर, ये हजरत शम्स ने बार गए अल्लाह मुझे कोई ऐसा बंदा मिला दे जो मेरी सोबत का मुकम्मल हो जाए। तो सर ये जो मुरीद जो होता है मुराद की ख्वाहिश तक पहुंचता है या मुरीद अपनी कोशिश?
ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह हैं। ठीक है ना? अब देखें ना, एक बंदा जो इतना साहिब इल्म हो जाए जो ऐसे हजरत शम्स तबरेज थे, तो ला महाला उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक डिज़ायर पैदा हुई, एक तलब पैदा हुई कि किसी बंदे को मैं ये अपना इल्म दान करूं, अपना इल्म जो है उसको नवाजूं या उसका जहन उस तरह बना दूं कि लोग मुझे और उसको दोनों को सराह दें। कम अज कम अल्लाह मुझे सराह दे कि यार यू हैव डन अ गुड जॉब, यू हैव प्रिपेयर्ड अनदर पर्सन। बात समझ रहे हैं आप? देखे ना, एक सूरत यह है कि हजूर मुर्शिद करीम के दिल में ये तलब पैदा हो कि भाई कोई बंदा ऐसा हो जिसको मैं, जिसका जहन ऐसा कंगी करूं कि उसकी ऐसी मशातगी करूं कि फिर उस जैसा कोई हसीनो जमील ना दिखे, तो नाम किसका होगा? अब्बा का, क्योंकि उन्होंने बनाया उस बंदे को। ठीक है, अब फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि आप वो बंदा बन जाएं, तो आप किसी ऐसे मशाता को या किसी ऐसी ब्यूटी पार्लर वाली को ढूंढें जो आपको बहुत ही खूबसूरत बना दे। तो ये दोनों एंगल आ गए ना इसमें, यानी मुरीद का के अंदर डिजायर होना भी जरूरी है और मुर्शिद का उसको अपनाना भी जरूरी है। ठीक है, वो दुआ करता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा दे दे। अब्बा ने बताया कि अब गौस अली शाह साहब, ठीक है, जिनका तस्करा है गौसिया किताब पढ़ती हैं, अब उनको कोई बंदा नहीं मिला कि जिसको वो तैयार करके जाते। ठीक है, वो गुल हसन कादरी साहब ने सिर्फ इतना किया कि उनके वो मलफूजात जो थे, उनके इरशादात जो थे, उनको किताबी सूरत में लिख दिया। ठीक हो गया? बात वाजे हो गई?
जी सर।
यानी ये दोनों तरफ से हो सकता है, मतलब है ये भी हो सकता है कि मुरीद जो है वो चाहे कि मुझे कोई अच्छा सा ब्यूटी पार्लर मिले। किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला और उसने चाहा कि कोई तो ऐसा बंदा, सीधे चेहरे वाला बंदा मेरे पास आए कि मैं जरा उसको डेकोरेट करके दिखाऊं। किसी कोजे को कितना को डेकोरेट कर देगा? नहीं, अब जाहिर है जबड़ा ही बाहर निकला हुआ तो क्या करेगा। देखे ना, फर्ज करें किसी की नाक ही बहुत लंबी है तो वो क्या कर सकता है, ये आंखें छोटी हैं तो उनको बड़ा होने का तासर तो दे सकता है, लेकिन तो कुछ थोड़ा सा नीचे मसाला भी तो चाहिए ना जिसको बनाना है। जी इरशाद, मैं शुरू का जुमला ही नहीं सुन सका, माफी चाहता हूँ। ये क्या कहा आपने शुरू?
हजरत मारूफ करसी से किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है, तो उन्होंने कहा ये अल्लाह की अता है।
अब ये मारूफ करखी का जवाब है जी, ये अब इस पे अल्लाह बेहतर जानता है उनके जेहन में क्या था। जब ये सवाल मुझसे किया गया तो मैंने कहा भाई लाइकिंग को मोहब्बत कहते हैं।
उन्होंने कहा था अल्लाह के फजल से,
वो उनका एंगल था, ठीक है। मैं इस एंगल से इत्तफाक नहीं करता। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि लाइकिंग को कहते हैं, देखे ना, एक दर्जा है प्यार, एक दर्जा है मोहब्बत, एक दर्जा है इश्क, एक दर्जा है अकीदत, एक दर्जा है वजदान, ठीक है। मैंने इस पे गौर किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सारे लाइकिंग के रूप हैं। मसलन अब एक बच्चे को फूल अच्छा लगता है, क्या कर रहा है? वो लाइक कर रहा है। अब वो जाके फूल को तोड़ लेता है, न सिर्फ तोड़ता है बल्कि थोड़ी देर बाद उसकी एक एक पत्ती तक नोच के तो फेंक देता है। अब ये उसकी लाइकिंग का एक अंदाज है। ये हमारे मुआशरे में प्यार जिसको कहते हैं वो ये दर्जा है, पोजेस करना, यानी वी वॉन्ट टू पोजेस ईच अदर, ये हमारे यहाँ प्यार ये है। अब अगला दर्जा ये है कि मुझे फूल अच्छे लगते हैं, मैं क्या करता हूँ अपने घर के अंदर गमलों में या कहीं लॉन में गुलाब लगाता हूँ, उसको पानी देता हूँ, उसकी नलाई करता हूँ या माली रखता हूँ, ठीक है, मुझे फूल अच्छे लगते हैं, ये लाइकिंग का दूसरा दर्जा हो गया कि नहीं? इसी तरह जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है उसे मोहब्बत कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसकी केयर कर रही है, ग्रो कर रही है। अब जहाँ तक ये जवाब है कि ये सब अल्लाह ही की अता है, जाहिर है बिल्कुल अल्लाह की अता है, इसमें तो कोई दूसरी बात कही नहीं जा सकती ना। लेकिन बात ये कि आपकी लाइकिंग किस दर्जे पे है, पोजेस करने के दर्जे पे तो ये आम शौरी दर्जा है, इसे हटा दें। दूसरा दर्जा क्या है कि आप खिदमत में लग जाएं, जैसे माँ बच्चे की खिदमत कर रही है, या मैंने अपनी मिसाल दी माली फूलों की देखभाल करता है, दोनों को फूल अच्छे लग रहे हैं। तीसरा दर्जा सुने आप, लाइकिंग का तीसरा दर्जा ये है जिसे इश्क कहते हैं, वो क्या है? जी, जिसको मैं पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं मैं वैसा बन जाऊं, क्या मैं उसकी तर्ज फिक्र अपनाना चाहता हूं, लिहाजा मैं फोकस्ड हो जाता हूं। गौर करें, इस फोकसिंग के नतीजे में उसकी लहरें मेरे अंदर दौड़ करती रहती हैं और मेरा जहन उसके सांचे में ढलता चला जाता है, बशर्ते कि मैं जहनी तौर पे आमादा और तैयार हूं। ठीक हो गया। फिर इसी तरह दर्जा आ जाता है अकीदत का, जहां पे आप सचमुच उस जैसे बन जाते हैं या आपके अंदर से उसका अक्स झलकना शुरू हो जाता है जिसको आप पसंद करते हैं। अब ये सारे दर्जे आगे پیر و مرشد کی محبت مرید اور پیر و مرشد کی محبت کے درجے. اب آپ کہیں کہ جی اللہ کی عطا ہے, بے شک اللہ نے کہا کہ جی میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا, یعنی محبت ایک چیز ہے مخلوق دوسری چیز ہے, دونوں کو ایک ساتھ پیدا کیا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ اللہ کے فضل اور کرم کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا ذہن بکھرنے سے جتنا بچا رہے گا, جتنا آپ یکسو رہیں گے اتنا آپ کیا ہوگا محبت سے گزر کر عشق میں داخل ہو جائیں گے. اب واضح ہو گئی بات؟ ویلکم.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
جی سر, میرا کوشچن تھا جو سورہ نازعات ہے اس کی آیت نمبر 12 ہے, تو اس میں جو ہے یہ کہا گیا کہ جب آپ ہم اٹھائے جائیں گے تو ہماری اس کے بعد جو ہے ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی, اور وہ جو ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے گھاٹا ہے, تو یہ اسی سینس میں کہا گیا یا اس کی اور بھی؟
جی ہاں, اس کی سینس یہی ہے. دیکھیے انسان کی سوچ, انسان کی سوچ, اب یہ سوچ کا لفظ جو ہے نا یہ ذرا غور کریں, یہ ایک اور شرارت ہے. سوچ ہندی میں آپ شوچالے بولتے ہیں, یہ سوچ اصل میں ہندی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے آپ کے تھاٹ کی پروسیسنگ کے نتیجے میں جو کچھ فضلہ نکلا اس کو سوچ کہتے ہیں. اللہ رب کریم انسانی سوچ پہ طنز فرما رہے ہیں, ٹانٹ کر رہے ہیں کہ تم عجیب بے وقوف ہو, جب تمہیں دنیا میں زندہ کیا جاتا ہے تو تم بڑے مزے کرتے ہو, اور ویسے کہہ رہے ہو کہ جب میری ہڈیاں گل جائیں گی تو مجھے آپ کیسے زندہ کریں گے. آگے کہا نا کہ بھی تمہیں تخلیق کرنا مشکل ہے یا آسمان اور زمین بنانا مشکل ہے؟ اور کریں تو اللہ نے کیا فرمایا, جب آپ کہتے ہیں کہ ازام الناخرات, جب ہماری ہڈیاں گل جائیں گی وہ قرت الخاصرات, ہمارا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں جب تم بغیر ہڈی کے تھے, ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں؟
نہیں.
تو جب تم بغیر ہڈی کے تھے اور میں نے تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دیا, تو تمہیں بڑے مزے آ رہے تھے, تم دنیا میں بڑے مہکے کیا کہتے ہیں مگن ہو گئے تھے, اور اب تم مجھے تانا دے رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو کہ جی جب ہماری ہڈیاں کھل جائیں گی تو ہمیں کیسے آپ کھڑا کریں گے؟ اور کریں. اب واضح ہو گئی بات؟
جی سر.
یعنی انسانی سوچ جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ جب میری ہڈیاں بھی گل جائیں گی تو مجھے کون واپس سے زندگی میں پلٹا سکتا ہے؟ تو اس پہ اللہ رب کریم کیا کہہ رہے ہیں کہ مثال دو ان کو ذرا. ہیں وہ موسیٰ کی جس کے پاس جب فرعون کے پاس اسے بھیجا, اس نے کیا کہا, انا ربکم الاعلی. اس نے اللہ کے سامنے سبمٹ کرنے کے بجائے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا. اللہ نے کہا نکال الاخرت والولا, ہم نے اس کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا. اب واضح ہو رہی ہے بات؟
جی سر. کانسیپٹ تھا کہ جیسے اب میں جب ہم نے یہ آپ کا لیکچر سن کے, ویسے ہی جیسے ہم لوگ ہر جگہ ہمیں ٹرانسلیشن بتائے جیسے پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو, اور اللہ کا انسان کو خوف تو نہیں ہونا چاہیے.
بالکل,
جہاں پہ خوف ہوگا وہاں محبت تو نہیں ہو سکتی.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی جی,
تھوڑا سا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں گے, تھوڑا سا اور بارے میں بتائیں گے, کیونکہ
میں دیکھیے فقیر ہی. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے ایک کانسیپٹ دیا گیا اور یہ ہمارے یزیدی علماء نے دیا, جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو اسلام کی تعلیمات کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے بادشاہ وقت کی سرپرستی میں علماء کا ایک گروہ آگے آیا اور اس نے تعلیمات کو ستیہ ناس کر دیا تاکہ لوگ امام حسین کو مطلب ہے فوقیت نہ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے اللہ کا وہ تصور پیش کیا جس میں اللہ رب کریم ایک ڈنڈا بردار ایک آگ کا الاؤ جلا کے بیٹھے ہوئے بڑی عجیب سی ہستی بن گئے. یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ اللہ جو ہے وہ ڈنڈے مار مار کے تمہیں آگ میں ڈالے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تصور بڑی حکمت سے بڑی طریقے سے بڑے مطلب شیطنت کے ساتھ رائج کر دیا گیا اللہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے تاکہ لوگ حکمران طبقے کو ہی عزت اور فوقیت اور جو ان کے چیلے چمانٹے ہیں ان کو ہی عزت اور فوقیت دیتے رہیں. غور کریں نا, اگر حکمران کسی کو کہہ دے کہ یہ عالم ہے یہ یونیورسٹی بناؤ اور یہاں بیٹھ کے یہ جو کچھ کھچڑی پکا رہا ہے یہ عالم بن گیا تو گویا وہ عالم ہو گیا. سچ مچ اس کے پاس علم ہے نہیں یا ہے کسی کے پاس
نہیں.
اب اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ اس کے ریئیکشن میں اٹھا, ان کو صوفیاء کرام کہتے ہیں. صوفیاء کرام نے ایک نیا باجا بجایا کہ بھی اللہ تو بہت ہی محبت کرنے والا ہے, اللہ سے عشق کرو. غور کریں وہ اللہ کے عاشق بن گئے. اس ان وہ جو ایک ڈنڈا بردار اور آتش کدا کے سامنے بیٹھا ہوا ایک ڈیٹی جو تھی ایک ہستی جو تھی اس کو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی پیاری ہے اس سے عشق کرو. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے دوسرا کانسیپٹ یہ جنم لیا. اس نے دوسرا باجا بجا دیا, وہ بالکل ہی بینڈ بج گیا سارا. پھر بیچ میں تیسرا طبقہ سامنے آیا جس نے دونوں اینڈز کو میٹ کرنے کے لیے دونوں انتہاؤں کو بیلنس کرنے کے لیے یہ فلسفہ نہیں یہ حقیقت بیان کی کہ اللہ خالق ہے اور وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کا عاشق نہیں بننا, ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کا محبوب بننا ہے. غور کریں تین فلسفے ہیں یہ. اب ہم چونکہ اس کو اس طرح سے نہیں جانتے یا ہم نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنا, ان تینوں فلسفیز کو اس طرح سیگریگیٹ کر کے آپ دیکھ لیں کہ کون سی فلسفی زیادہ بہتر ہے. کہ اللہ خالق ہے, میں مخلوق ہوں اور مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں الفاظ, محبوب کبریا, ہاں یا نہیں؟ جب میں محبوب کبریا کی امت میں تھے ہوں تو مجھے کیا بننا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟
جی سر.
اب ساتھ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا ریفرنس بھی لے لیجئے. اس میں کیا کہا, کل کہہ دیجئے ان کو, ان کنتم تحبون اللہ, تمہیں اللہ اچھا لگتا ہے تم اللہ سے پیار کرتے ہو, فتبعونی, میرے جیسے بن جاؤ. ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ بھئی وہ ان کا پیروی کرو ان کا اتباع کرو. اتباع کریں گے تو انہی جیسے بنیں گے نا بھائی. اگر دیکھیں نا آپ اپنے پیر و مرشد کا اتباع کرتے ہیں تو آپ کس جیسے بنیں گے؟ تو اتباع کا مطلب ہے ان جیسا بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ یحببکم اللہ, یحببکم اللہ, تاکہ اللہ تم کو پیار کرے. فاستغفر لکم ذنوبکم, تاکہ تمہارا ذہن بڑا کر دے تمہاری شارٹ کمنگز دور کر دے. غور کریں اب یہ جو فلسفہ ہے, یہ جو اللہ کا کلام ہمیں جس فلسفے کی طرف متوجہ کر رہا ہے, کیا کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ. مجھے بتائیں اب آپ کی ماں کتنی بھی سخت گیر ہو, اگر آپ اس کے پیاری بچی ہیں, if she loves you, مجھے بتائیں how proud you will be of her and how proud she'll be of you. غور کریں یعنی دیکھیں نا, اگر آپ کی والدہ سخت گیر ہیں لیکن آپ ان کی بڑی محبوب ہیں, तो आपको लगेगा कि वो सख्त गिर हैं?
नहीं,
बस यही कहानी है। तो आज से अगर आप ये, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका दिया कि मैं ये तीनों फलसफे बड़े वजाहत से आपके सामने यानी अर्ज कर दिए मैंने कि ये तीन फिलॉसफीज हैं, चॉइसेस योर्स। आप अल्लाह को एक डंडा बरदार आतिशकदे के सामने बैठा हुआ एक हस्ती माने, या उसको एक बड़ी खूबसूरत हसीना मान के उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएं, या उसको अपना खालिक, अपना मालिक, अपना परवरदिगार मानते हुए उसके महबूब बन जाएं। ये तीन बातें कौन सी पसंद है आपको? चॉइस इज योर्स। ठीक है, जिसने अल्लाह से डर को अपना लिया वो जाने, उसका अल्लाह जाने। और जिसने अल्लाह को के इश्क में गिरफ्तार हुआ, तो कहा जाता है कि जी जब अल्लाह से इश्क करते हैं तो वो बड़ी आजमाइशें आती हैं, वो बड़ी सख्तियों से गुजारता है
जी।
कहते हैं, क्योंकि हमने तो ये फलसफा अपनाया ही नहीं, हमने तो फकीरी का फलसफा अपनाया। यानी एक तबके को आप कह लें कि मौलवियत है, दूसरा ये सूफिया कराम है, और तीसरा फकीरी है। अब असल कौन सा है? जो आपको अच्छा लगे वही असल है। ठीक हो क्या?
जी सर।
वैसे सच सच बताना, कौन सा चूज करोगी? तो फकीरी जो है ना, ये सबसे बेहतर है। बंदा जब अल्लाह का फकीर बन जाता है, अब पूछे फकीर किसे कहते हैं? पूछे
किसे कहते हैं सर?
फकीर कौन होता है? मांगने वाला, मांगता है, जो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं मांगता। उसका अल्लाह से ऐसा गहरा ताल्लुक होता है कि वो अल्लाह के सिवा किसी को इस काबिल ही नहीं समझता कि उससे मांगा जाए। और करें, आया मजा? यह है फकीर। फकीरी क्या है कि बंदा दरोबिस्त खुद को अल्लाह के साथ एसोसिएट कर ले और अपनी हर जरूरत, हर हाजत को उससे वाबस्ता कर ले। यह है फकीरी। हजूर मुर्शिद करीम ने कहा कि उस बेन्याज जात से न्याजमंदी का रिश्ता पैदा कर लो। इस जुमले की दाद दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट वाजे हो गया कि असल में अल्लाह से डरना क्या है और अल्लाह का आशिक बनना क्या है और अल्लाह का महबूब बनना क्या है, इसमें फर्क है। बस आगे मर्जी आपकी, चॉइस इज योर्स। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जी, और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम।
सर बातें मेरे मुराद की में से एक सवाल है।
आप
पेज नंबर 338। जब आदमी बेअख्तियारी से जिंदगी अपना लेता है तो फिर जजा और सजा दोनों की अहमियत खत्म हो जाती है। जब आप इजाफी अकल इस्तेमाल करते हैं तब खुद को बाइख्तियार।
इजाफी अकल, ये लफ्ज इजाफी अकल जो है ना, बस इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये कैच है। मुगालता गलती, उससे गलती कराती है। ठीक है, बेख्तियारी क्या है? बेख्तियारी आप ख्वाब में जो कुछ करते हैं क्या वो इख्तियार से कर रहे हैं?
नहीं सर।
और करें, यानी जब आप वहां सब कुछ कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, देखते हैं ना बाज़ लोग ख्वाब के भी मैं हवा में उड़ रहा था, फिर आप देखते हैं कि भी आप टाइम एंड स्पेस से आजाद होते हैं, आप सोचते हैं मक्का मदीना और एक सेकंड में आप देखते हैं कि मैं तो मक्का मदीना में फिर रहा हूं। तो ये इख्तियार है आपका?
नहीं सर।
तो जब आप बेख्तियारी की जिंदगी अपना लेंगे तो आप कैसे मजे कर रहे होंगे, गौर कर लीजिए, जैसे आप ख्वाब में मजे करते हैं। वो अब आप ये ना कह दीजिएगा नहीं जी ख्वाब में तो हम डरते भी हैं, वो आपकी तर्ज़े फिक्र है जो आपको डरा रही है, वरना तो डर शर तो है ही कोई नहीं। देखे ना, बेख्तियारी की जिंदगी अपनाना, यानी आप मान लेना कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। अभी ये जो पहला सवाल आया था वो इसी इख्तियार के बारे में था, मैंने उसकी वजाहत अर्ज की। इजाफी अकल जो आप, जी जी देखे ना, एक अल्लाह ने आपके लिए प्रोग्राम डिवाइस किया, आप उसको फॉलो करने के बजाय अपनी अकल, तो ये इजाफी अकल नहीं हुई। फिरौन ने क्या कहा, अना रब्बुकुम अलआला, उसने इजाफी अकल इस्तेमाल की, वनकाल अलआखरत वलूल। गौर करें जरा, अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर कट साफ बता रहे हैं कि अगर अपनी अकल बरतोगे तो यू आर नो मोर विद मी। अगर हम देखें ना अल्लाह के मुकाबले में अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इजाफी हुई ना, ठीक हो गया। उसका जवाब भी आ चुका है कि जी जब मेरे अंदर एक बड़ी लंबी डिबेट चलती है तो मैं कुछ बातें गलत सोचता हूँ तो उस पर पकड़ तो नहीं होगी, तो क्या जवाब दिया अब्बा ने, जी नहीं। देखे कैलकुलेशन पर्पसेस यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग, एवरी प्रो एंड एवरी कॉन, यानी उसके जब आप कोई बात सोच रहे हैं तो आपको उसका पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अच्छे बुरे, मेरिट डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब कुछ कैलकुलेट करना है या नहीं। फॉर द सेक ऑफ पर्पस ऑफ कैलकुलेशन आपको हर चीज सोचनी है, क्या लफ्ज बोला, हर, ये एच ई आर वाला हर नहीं है, ये हे रे हर वाला हर है। ठीक हो गया जी, टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। किसी और का कोई सवाल रह तो नहीं गया, चले खामोशी का मतलब है नीम रजामंदी, इसलिए अल्लाह हाफिज। टेक ए गुड केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।